नमस्कार भारत, 14 मार्च दिन मंगलवार। मैं हूं संदीप सोनी। एमफिल पीएचडी में भेदभाव का दावा करने वाले जेएनयू के दलित शोध छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला।
का दरवाजे को तोड़ा, देखा कि ये जो स्टूडेंट है, एमफिल का स्टूडेंट है मुथु कृष्णन, ये वहाँ फैन से लटक करके आत्महत्या किया हुआ था।
गोवा की लड़ाई, दिल्ली पहुंची, किसे मिलना चाहिए सरकार बनाने का मौका। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और सुनिए, क्या भारतीय राजनीति में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होती जा रही है।
ओबीसी जितने थे तो इतने लोगों को टिकट दिया गया, और दलित से इतने थे तो उनको इतना टिकट दिया गया, और इतने अपर कास्ट हिंदू थे तो मेरे ख्याल से उनके साथ साथ मुसलमान भी यूपी में रहते हैं।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक दलित शोध छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। दिल्ली पुलिस ने इतिहास विभाग में एमफिल कर रहे मुथु कृष्णन जीवानंदम का शव उनके एक दोस्त के घर में पंखे से लटकते हुए पाया। पुलिस जीवानंदम की मौत को आत्महत्या मान रही है। वहीं बीबीसी से बातचीत में जीवानंदन के पिता ने कहा है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि वो कायर नहीं था जो आत्महत्या करे, वो एक बहुत प्रतिभाशाली छात्र था। रजनी कृष के नाम से जाने जाने वाले जीवानंदम सोशल मीडिया में दलित छात्रों के संघर्ष पर कहानियां भी लिख रहे थे। ताज़ा पोस्ट में उन्होंने यूनिवर्सिटी में गैर बराबरी का मुद्दा उठाया था। ब्रिटानी संसद ने एक अहम कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यूरोपीय संघ से अलग होने की शर्तों में बदलाव के प्रयासों को खारिज कर दिया। सरकार इस महीने के अंत में यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। वहीं स्कॉटलैंड की सरकार के ब्रिटेन से अलग होने के सवाल पर दूसरा जनमत संग्रह कराने के ऐलान के बाद ये प्रक्रिया और जटिल हो गई है। तुर्की की सरकार का कहना है कि नीदरलैंड्स में दो तुर्क मंत्रियों को रैली न करने दिए जाने के विरोध में तुर्की में नीदरलैंड्स के राजदूत को देश वापस नहीं लौटने दिया जाएगा। उप प्रधानमंत्री नोमान कुर्तुलमुस का कहना है कि तुर्की नीदरलैंड्स के साथ सभी उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ताओं को भी रद्द कर रही है। जिस समय तुर्क नेताओं की नीदरलैंड्स में होने वाली रैलियों को लेकर विवाद हुआ, उस समय तुर्की में नीदरलैंड्स के राजदूत देश से बाहर थे। वहीं नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने इस विवाद में अपनी सरकार की भूमिका का बचाव किया है। तुर्की के उप प्रधानमंत्री नोमान कुर्तुलमुस का कहना है कि नीदरलैंड से गलती हुई है। उन्होंने कहा, यदि हमें गंभीरता से नहीं लिया गया और यदि विवाद शुरू करने वाले नीदरलैंड्स ने विवाद से हुए नतीजों को सुलझाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, तो तुर्की उन मुद्दों पर चर्चा करेगा जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो तुर्की नीदरलैंड्स को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर भी करेगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा पर अपने फोन ट्रैप किए जाने के आरोपों की संसदीय जांच के समक्ष जवाब देने के लिए और अधिक समय मांगा है। न्याय विभाग से सोमवार तक संसद की इंटेलिजेंस समिति के समक्ष जवाब पेश करने के लिए कहा गया था। एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का समर्थन में सबूत पेश करने के लिए और अधिक समय की जरूरत है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के प्रवक्ता का कहना है कि फोन टेप किए जाने के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्कल ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन की अपनी यात्रा अमेरिका के पूर्वी तट पर भारी बर्फबारी के कारण टाल दी है। अमेरिका के मौसम विभाग ने कई प्रांतों में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं से सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया है। न्यूयॉर्क के मेयर बिल दे ब्लासियो का कहना है कि बर्फबारी के कारण हालात खतरनाक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, इतनी बर्फ इतनी रफ्तार से गिर रही है, ये खतरनाक है। सड़कों पर निकलना बेहद खतरनाक होगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो सड़कों पर न आएं। अमेरिका की एक तटस्थ संस्था का कहना है कि यदि रिपब्लिकन पार्टी का पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों को वापस लेने के लिए लाया जा रहा कानून पारित हो गया तो करीब 1,40,00,000 लोग स्वास्थ्य बीमे से वंचित हो जाएंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार।
சார் சூசைட் பண்ணிட்டாரு சொல்றாங்க, எனக்கு அது அதெல்லாம் நம்பர் இல்ல, நம்பிக்கை இல்ல, பையன் வாய் பண்றேன். அதான் சார் கிளம்பி வந்துட்டு சார்.
உங்ககிட்ட ஏதாவது பேசினாரா, உங்ககிட்ட இன்னைக்கு ஏதாவது பேசினாரா பையன்?
ये आवाज जीवनंदम की है, जो तमिलनाडु के सेलम में सिक्योरिटी वॉचमैन का काम करते हैं, जिनका बेटा मुथु कृष्णन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल की पढ़ाई कर रहा था, जिसका शव बीती शाम एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। इस घटना से पहले 10 मार्च को मुथु कृष्णन ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में लिखा था, एमफिल पीएचडी दाखिलों में कोई समानता नहीं है, मौखिक परीक्षा में कोई समानता नहीं है, समानता को नकारा जा रहा है। जेएनयू के छात्र मुथु कृष्णन ने अपने फेसबुक पन्ने पर ये बातें नहीं लिखी होती तो उनकी मौत की खबर चर्चा में शायद नहीं आती। इस मामले में और जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता वात्सल राय ने दक्षिण दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त चिन्मय बिस्वाल से बात की।
ये हमारे पास शाम के 5 बजे एक पीसीआर कॉल मिला, तो कॉल मिलने पे पुलिस टीम मुनीर का विहार का एक घर पे वहाँ पे जाकर के पहुंचे। पहुंचने से देखा कि एक कमरा अंदर से बंद है, उसका दरवाजे को तोड़ा, तोड़ने से देखा कि ये जो स्टूडेंट है, एमफिल का स्टूडेंट है मुथु कृष्णन, इनका नाम क्रिश करके बताया जा रहा है, ये वहाँ फैन से लटक करके आत्महत्या किया हुआ था।
तो पूरे मामले को पुलिस किस तरह से देख रही है?
अभी तक तो इसमें हम जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं, इसमें ये कोई पर्सनल मैटर को लेकर के किया हो सकता है, ऐसा लग रहा है।
क्या आपको लग रहा है ये सुसाइड का मामला है, पर्सनल वजह से आपको लग रहा है?
वजह अभी तक कोई इस तरह से साबित नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास कोई सुसाइड नोट नहीं है और ना ही इसको हम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ किसी मैटर से संबंधित करके अभी तक देखने का हमारे पास कोई चीज नहीं है।
इनकी मौत के बाद लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही हैं इनकी पोस्ट, जिसमें इन्होंने इनइक्वालिटी की बात की है और कुछ और दूसरी बातें की है। क्या पुलिस को इन पोस्ट के बारे में जानकारी है? आप इस एंगल से भी कुछ देख रहे हैं?
ये अभी की घटना है, 174 प्रोसीडिंग्स में हम इन सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन जहां तक इस तरह से पोस्ट की बात है, ये अपना हर इंसान को, हर स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान अपने बौद्धिक विचारों से हर चीजों को देखने का एक नजरिया अंदाज होता है, तो ये इसको हम सुसाइड से जोड़ करके देखने का अभी तक कोई आवश्यकता नहीं समझ रहे हैं। ये जेएनयू के झलम हॉस्टल में रहते थे और मामले की अभी जांच हम कर रहे हैं।
ये थे दक्षिण दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त चिन्मय बिस्वाल। उधर दिल्ली से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के सेलम में रहने वाले जीवानंदम को यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा आत्महत्या कर सकता है, जैसा कि उन्हें बताया जा रहा है। बीबीसी तमिल सेवा के हमारे सहयोगी थंगवेल ने सेलम फोन करके जीवानंदम से बात की।
வேற ஒண்ணு அவருக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லல,
அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, நல்ல பையன், ஒழுக்கமான பையன், படிக்கிறது தவிர வேற எந்த இதுக்கும் போக மாட்டாரு, யார்கிட்டயும் எதுவும் சண்டை சச்சரவுலாம்
இருக்கு। ஜீவானந்தம் கே ரஹே தே, மேரே பேட்டே நே 2 தின் பஹலே ஃபோன் கர்கே கஹா தா கி பரீக்ஷா கே பாத் கர் ஆவுங்கா, ஹம் உம்மீத் கர் ரஹே தே கி வோ அப்னி படாயி பூரி கர்கே ஏக் அச்சா ஜீவன் வ்யதீத் கரேகா, முஜே யகீன் நஹீ ஹோதா கி உஸ்னே ஆத்மஹத்யா கி ஹோகி। யே தே முத்து கிருஷ்ணன் கே பிதா ஜீவானந்தம் கே ஷப்த। भेदभाव के खिलाफ अपने फेसबुक पन्ने पर लिखने वाले मुथु कृष्णन के एक सीनियर राहुल सोन पिंपले ने बीबीसी से बात की और अपने दोस्त के बारे में कुछ और बातें साझा की।
एमफिल फर्स्ट ईयर में है, मैं एमफिल सेकंड ईयर में हूँ, तो उसके वजह से उसका सर्कल आई डोंट नो अलग होगा, जानते इसीलिए क्योंकि दलित स्टूडेंट है, मैं भी दलित स्टूडेंट हूँ और अम्बेडकराइट है, वो भी कॉन्शियस अम्बेडकराइट था आइडियोलॉजिकली, हम भी एक आइडियोलॉजी अम्बेडकरिज्म में बिलीव करते हैं, तो उस तरह का एक अपना इंटरेक्शन जैसे होता है, कभी जैसे दिख गए तो जय भीम कह दिया, मैंने भी जय भीम कह दिया।
तो ये पूरा जो मामला है ये कैसे सामने आया, आप लोगों की जानकारी में कैसे ये बात आई?
मुझे तो ये 6 बजे मेरे एक दोस्त से फोन आया कि दैट ही कमिटेड सुसाइड करके मुनीर का विहार में, तो मैं करीबन 6:15-6:30 बजे तक वहाँ पहुँचा।
पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है अभी तक,
इसीलिए हम और अभी तक इस तरह से कोई बात भी हमारे सामने, हम भी नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली हुआ क्या है। बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि अगर इस तरह की कोई जानकारी है या फिर इस तरह का कोई भी बात है तो हम सभी स्टूडेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेसिकली हुआ है।
जेएनयू के मृतक छात्र मुथु कृष्णन के सीनियर राहुल सोन पिंपले से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। इस पूरी घटना के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टूडेंट्स से बात करने की हम लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं पुलिस का कहना है कि मंगलवार यानी आज जब शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा तभी पता चलेगा दलित छात्र की मौत कैसे हुई, क्या वाकई उन्होंने खुदकुशी की जैसा कि पुलिस पहली नज़र में मान रही है, और क्या वाकई मुथुकृष्णन के साथ किसी तरह का भेदभाव हुआ था जैसा कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, ये जांच का विषय है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
बीबीसी हिंदी से नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, और अब बात गोवा की जिसकी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने कम विधायक वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जबकि उससे अधिक विधायक वाली पार्टी कांग्रेस को मौका नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। गोवा में कांग्रेस ने विधानसभा की 40 में से 17 सीटें हासिल की लेकिन सरकार बनाने की दौड़ में पार्टी पिछड़ गई। इसे लेकर कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं। खबरें थीं कि वरिष्ठ नेताओं के प्रबंधन कौशल से नाराज होकर कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे ने अलग रास्ता अपनाने का मन बना लिया है, पार्टी से अलग होने का मन बना लिया है। हालांकि हमारे सहयोगी वात्सल्य राय से बातचीत में उन्होंने इस तरह की खबरों को गलत बताया और अपने मन की बात खुलकर रखी।
नहीं, मैं कांग्रेस से अलग नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं बहुत दुख हुआ है कि इतना बहुमत मिलने के बाद भी हम सरकार बन नहीं पाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बुलाना चाहिए था सरकार बनाने के लिए, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो प्रेसिडेंट होता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, और गोवा ने एंटी बीजेपी वोट दिया है, और पहले कांग्रेस को संधि देना चाहिए था सरकार बना के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए, लेकिन अभी देखेंगे क्या होता है, लेकिन जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है।
कहीं तो हम पीछे रह गए कांग्रेस पार्टी, कोई डिसीजन हमने लेना चाहिए था वो ठीक तरह से नहीं ले पाए, इसलिए ये सिचुएशन।
क्यों निर्णय नहीं हो पाया जबकि आपकी पार्टी के बड़े नेता भी वहाँ मौजूद थे?
अभी मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, नहीं हुआ, वो गलती थी कांग्रेस पार्टी की और हमारे जो लीडर स्थानिक थे इधर, वो ठीक तरह से सिचुएशन हैंडल नहीं हुआ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गोवा का जनता जो है, जिन्होंने ये सब लोगों को जिताया है, उनका प्रभाव उन पे निश्चित पड़ेगा और वो हमारे साथ रहेंगे।
जब नई सरकार का गठन हो जाएगा तो उसके बाद क्या स्थिति आप देख रहे हैं?
नहीं, हम एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है, 17 है कांग्रेस, 9 से हमारा संख्या 17 तक पहुंच गया है, देखा जाएगा अभी क्या होता है। हम ऑपोजिशन में है, हम ऑपोजिशन में भूमिका हम निभाएंगे। 17 नए फेसेस लेके मैं हूँ, मेरे साथ बहुत से दूसरे लीडर्स है, सब जीत के आए हैं और हम ये लड़ाई चालू ही रखेंगे। को लगा कि हमने, हमारे लीडर्स ने जो निर्णय ठीक तरह से नहीं लिया इसके वजह से ये सब हुआ है, लेकिन मुझे मेरे लीडर राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी इन पे पूरा विश्वास है और जो होगा आगे के दिन में ठीक से होगा।
किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आगे? मैं वही
देखेंगे,
आपसे जानना
चाह रहा हूं। देखेंगे, ये जो बहुमत जुटा गया है ये सबको मिनिस्टर बना के, ये कितने दिन टिकता है देखेंगे।
जो आप कह रहे हैं कि चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह से आपकी पार्टी हैंडल नहीं कर पाई पूरी चीजों को, तो हाँ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कमी रही, क्या आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था?
मेरे मन में जो कुछ था मैंने मेरे पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी को मेल से भेजा है और मैं उस पे ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो मेरे मन में है वो उनको भेज दिया। कल का तमाशा देख के मुझे दुख बहुत हुआ।
गोवा के कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे। उधर पूर्वोत्तर भारत के दूसरे राज्य मणिपुर में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच खींचतान जारी है। बहुमत को लेकर दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। दावे और हकीकत कहां तक पहुंची, जानने के लिए देर रात मैंने गुवाहाटी में हमारे सहयोगी पत्रकार दिलीप शर्मा से और जानकारी मांगी।
मणिपुर में जो घटनाक्रम है वो बदलते रहे हैं, लेकिन अब नई सरकार बनाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है, क्योंकि राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने निवर्तमान मुख्यमंत्री ओकराम इब्रू सिंह से इस्तीफा देने के लिए कहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आज शाम तक देंगे, लेकिन वो सोमवार की रात को ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इब्रू सिंह का इस्तीफा सौंपने के साथ ही अब नई सरकार गठन करने का जो रास्ता है, जो प्रक्रिया है, वो अब शुरू हो जाएगी। इस बीच मेरी बात हुई थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं मणिपुर के डॉक्टर आर के रंजन, और उन्होंने कहा है कि भाई जब दोनों ही पार्टियों ने बीजेपी और कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा किया था, लेकिन जो ओकराम ईवोबी सिंह है जब वो राज्यपाल से मिलने गए थे तो जो नेशनल पीपल्स पार्टी के जो जिन दो विधायकों का समर्थन उनके साथ होने की बात जो उन्होंने राज्यपाल के समक्ष कही उस पर राज्यपाल सहमत नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले बीजेपी के साथ एनपीपी के जो नेता गए थे उन्होंने अपने चारों विधायकों के हस्ताक्षर किए हुए पत्र समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिए थे। तो ऐसी स्थिति में अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मणिपुर में बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है।
ये थे गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा, जो बता रहे थे मणिपुर में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की दावेदारी कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। उधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में तस्वीर एकदम साफ हो जाए। उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देकर भी भारतीय जनता पार्टी 312 सीटें जीतने में सफल हुई है, जबकि मुस्लिम वोटों की दावेदारी करने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। ये नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं ये नतीजे, समझने के लिए बीबीसी संवाददाता इकबाल अहमद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनावी सर्वेक्षण करने वाली संस्था सीएसटीएस के यूपी प्रभारी असमर बेग से बात की।
देखिए, मुस्लिम कोई वोट बैंक नहीं है, मुसलमान एक सोशल ग्रुप है, जैसे बहुत से ग्रुप्स हैं किसी भी जगह होते हैं, और मुसलमानों का वोट भी डिफरेंट जगहों पर जाता है जैसे दूसरे ग्रुप्स का जाता है। तो एक जो एक मिथ क्रिएट किया गया है कि मुस्लिम्स का एक मोनोलिथ वोट बैंक है और 17.5% मुसलमान है यूपी में और जिसकी तरफ चले जाएंगे वो जीत जाएगा, ये एक मिथ है। जो लेकिन उस मिथ को क्रिएट करने से कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स को बहुत एडवांटेज मिलता है।
क्या इस वक्त ये दावे के साथ कुछ कहा जा सकता है मुसलमानों का कितना हिस्सा किसके हिस्से में गया होगा?
जो पहले से हमारे पास सर्वेज वगैरह आ रहे थे, हम उन्होंने खुद सर्वेज किए थे, तो उसमें ये था कि मुस्लिम्स का वोट जो है वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी में गया होगा, कुछ बसपा में गया होगा, कुछ मुसलमानों का वोट और छोटे मोटे जो और जमातें हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी में गया होगा।
आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, ये भी बहुत इस पर चर्चा हो रही है कि मुसलमानों का एक हिस्सा बीजेपी को भी गया है, क्या इसको बहुत ही किसी एविडेंस किसी सबूत की बुनियाद पर कहा जा सकता है?
देखिए, ऐसा है कि वो जो लोग ज्यादातर कह रहे हैं वो तो मतलब ऐसी हवा में अक्सर बातें हो रही हैं कि साहब वो गया होगा तभी वो इतना वोट मिला है बीजेपी को, लेकिन मैं आपको एक एविडेंस के हिसाब से बताता हूँ कि पिछला जो 2014 का इलेक्शन था जो हमने सीएसडीएस के साथ सर्वे करे थे तो उसमें हमने ये पाया था कि करीब 10% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था और करीब उतने ही परसेंटेज मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट दिया था। तो पिछले इलेक्शन में तो मुसलमानों का जो वोट गया था, जो हमेशा से कहते हैं कांग्रेस पार्टी ट्रेडिशनली मुसलमानों के सारे वोट लेती है, तो पिछले लोकसभा के इलेक्शन में दोनों को बराबर मुस्लिम्स के वोट मिले थे तकरीबन। तो इस बार भी हम समझ सकते हैं कि काफी मुसलमानों ने वोट दिया होगा, और उसका रीजन देखिए मेरी अपनी समझ से मैं बताऊं आपको कि उसका रीजन जरूरी नहीं कि इसलिए कि भाई मुसलमान बीजेपी को वोट देगा, वो तो हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाती रहती है या स्टेटमेंट जो उनके लीडर के आते हैं ज्यादातर लीडर्स के वो मुसलमानों के अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि आदमी जब वोट करता है, कोई भी इंसान मुसलमान हो या कोई भी हो, तो वो लोकल फैक्टर्स बहुत होते हैं। कोई कैंडिडेट है बीजेपी या किसी पार्टी से खड़ा हुआ, उससे मेरे ताल्लुकात हैं, वहीं रहते हैं हम लोग, वहां पे बहुत दिनों से वो एक्टिव है, काम कर रहा है, तो फिर वो जो सोशल रिलेशंस होते हैं, जो ताल्लुकात होते हैं, जो और दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से मतलब आदमी किसी को वोट देता है। जरूरी नहीं कि वो पार्टी ए का हो या बी का हो।
2014 के चुनाव में कोई भी मुसलमान एमपी चाहे किसी भी पार्टी का हो वो यूपी से लोकसभा में नहीं पहुंच सका। विधानसभा में भी तकरीबन 24-25 मुसलमान जीत कर आए अलग अलग पार्टियों से, जो कि पिछली विधानसभा यानी 2012 की विधानसभा में तकरीबन 67-68-68-70 एमएलए थे। तो ये जो मुसलमान एमएलए की तादाद कम हुई है, क्या मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी राजनीति में मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है उसको लेकर, और नॉर्थ इंडिया के जो दूसरे स्टेट्स हैं उसमें भी जाहिर है कि मुसलमान एमपी एमएलए बहुत ही कम है, ये एक क्या एक बहुत बड़ा इशू है खासकर नॉर्थ इंडियन मुस्लिम पॉलिटिक्स में?
कोई भी समझ सकता है, उसका ऑब्वियस रीजन ये है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में भी और इस इलेक्शन में भी यूपी में थंपिंग मेजोरिटी बीजेपी को मिली है, और बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पिछली बार भी लोकसभा के इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी किसी मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं किया, तो जीतने की तो जाहिर सी बात है कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जब बीजेपी ने डोमिनेट कर लिया, समझ लीजिए पूरा इलेक्शन पिछला वाला और ये वाला, उन्हीं के लोग सारे जीते हैं और उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है मुसलमान कैंडिडेट जो जीते हैं उनकी तादाद तो कम होनी ही थी। मतलब दूसरी पार्टी से जीत सकते थे और दूसरी पार्टी के पास कितने कम एमएलए थे आप देख ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से डिक्लाइनिंग रिप्रेजेंटेशन है। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है कि जो हमेशा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये मैंडेट है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और हमेशा बीजेपी का स्लोगन प्राइम मिनिस्टर साहब और दूसरे लोग देते रहते हैं कि सब सबका साथ सबका विकास, तो मेरे ख्याल से उन्हें शायद याद करना चाहिए कि सबका साथ में मुसलमान भी हिंदुस्तान में एक बड़ा सोशल ग्रुप है जो होते हैं, तो अगर सबको साथ लेके चलना है और कई उनके लीडर्स ने स्ट्रेटेजी दी कि साहब फला ओबीसी इतने थे तो इतने लोगों को टिकट दिया गया और दलित से इतने थे तो उनको इतना टिकट दिया गया और इतने अपर कास्ट हिंदूज थे, तो मेरे ख्याल से उनके साथ साथ मुसलमान भी यूपी में रहते हैं, तो आगे के लिए उनको सोचना चाहिए उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, तभी तो स्लोगन जो दे रहे हैं वो पूरी तरह से सच साबित होगा।
ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर असमर बेग।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
क्या आप जानते हैं कि दुनिया की लगभग आधी आबादी आज भी घरों के भीतर लकड़ी जलाती है, पारंपरिक चूल्हों का इस्तेमाल करती है, कोयला, कंडे, गोबर का इस्तेमाल करती है खाना बनाने में, पकाने में, और ये सारी दुनिया की बात है। और भारत में करीब 50 करोड़ लोग इन्हीं चूल्हों पर खाना पकाते हैं, जिसके धुएं से बीमारियां और जो मौतें होती हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो चिंता का विषय है। लेकिन ओडिशा राज्य की एक जनजाति इन दिनों एक नए किस्म के आधुनिक चूल्हों पर खाना पका रही है और पहले से बेहतर जीवन जी रही है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट सुनते हैं।
तपते सूरज की गर्मी में एक दुबला पतला शख्स कंधों पर लकड़ी की टहनियों का ढेर उठाए घने जंगलों से बाहर निकल रहा है। पिछले 20 वर्षों से टीबी यानी तपेदिक की बीमारी झेल रहे प्रकाश जानी इस बात से नाउमीद हो चुके थे कि उनका मर्ज कभी दूर हो सकेगा। अब प्रकाश की आंखों में चमक है।
20 सालों से टीबी का मरीज हूँ। घरों में धुएं से बच ही नहीं सकते थे, लेकिन अब चीजें ठीक लग रही हैं।
अस्पतालों के चक्कर कम हो गए हैं और डॉक्टरों ने प्रकाश को बताया है कि इसमें बड़ा असर उनके घर में कम हुए धुएं का है। घरों के भीतर धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के चलते टीबी, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर की बीमारियां आम रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा था कि घरेलू वायु प्रदूषण के चलते भारत में हर साल करीब 15 लाख मौतें होती हैं। लेकिन प्रकाश जानी के गांव नोतरपल्ली में चीजें बदल रही हैं। कोंद जनजाति वाले सभी 34 परिवारों में अब खाना बनने के दौरान धुआं भी कम निकल रहा है और ईंधन भी कम इस्तेमाल हो रहा है। करीब एक वर्ष पहले इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल कहे जाने वाले चूल्हों का प्रयोग शुरू किया था, जिसके लिए नेक्स्टलीफ एनालिटिक्स जैसे कई और गैर सरकारी संगठन आगे आए थे। कम ईंधन में ज्यादा खाना बनाने वाले इन नए किस्म के चूल्हों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। नेक्स्टलीफ एनालिटिक्स की प्रोग्राम डायरेक्टर तारा रामनाथन बताती हैं।
मार्केट प्रणाली वाली इस पहल से महिलाएं न सिर्फ कमा रही हैं, बल्कि नए चूल्हों की लागत भी चुका रही हैं और जिंदगियां भी बचा रही हैं। उन्हें खुशी इस बात की है कि उनकी इस पहल का श्रेय कोई दूसरा नहीं ले सकता।
घने जंगलों के बीच नयागढ़ जिले के नोतरपल्ली गांव में इस पहल के लिए पापड़ भी कम नहीं बेलने पड़े। ओडिशा में पर्यावरण संबंधी कई पहलों पर काम कर चुके गोविंद दलाई सबसे पहले इन नए चूल्हों के साथ यहां तक पहुंचे थे।
पहले गांव में जब ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ कि आप जो चूल्हे मिट्टी के चूल्हे यूज कर रहे हो उसमें बहुत दिक्कतें होता है, एक नया चूल्हे जो उनको कम धुएं वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा कम्युनिटी में प्रॉब्लम तो था। वो कोई भी नया टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सस्पिशन के साथ उसको देखते हैं कि ये काम करेगा नहीं करेगा।
दोपहर के 2 बज चुके हैं। प्रकाश जानी की पड़ोसी रंभा प्रधान अपनी झोपड़ी के चबूतरे पर पोते के साथ खुशी से खेल रही हैं। झोपड़ी के भीतर की छत और दीवारों पर वर्षों बनाए गए खाने से निकले काले घने धुएं की छाप है।
पहले तो पुरुष हम पर हंसते थे, बाद में उन्होंने समझा कि इनमें ईंधन कम लगता है तो जंगलों में लकड़ी भी कम काटनी पड़ेगी। अब पैसे तो मिलते ही हैं और पुरुष कभी कभी खाना भी बनाते हैं।
खाना बनाने के तरीके में बदलाव, चेंज और खाने के जायके से कॉम्प्रोमाइज शुरुआत में इन लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरा था, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात से खुश हैं कि इनके अपने चाहने वालों की सेहत पहले से कहीं बेहतर है। इस गांव के डॉक्टर ने भी हमें बताया कि कैसे नए किस्म के कम प्रदूषण करने वाले इन चूल्हों के चलते नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी की सेहत में बेहतरी दिखी है। इन चूल्हों की खास बात यह है कि इनके प्रयोग को सेंसर के जरिए मॉनिटर किया जाता है और सारा डेटा किसी भी इंटरनेट वाले कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। हालांकि ईंधन अभी भी वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन गांव वाले इस बात से खुश हैं कि हर महीने अगर वे 100 घंटे इन नए चूल्हों पर खाना बनाते हैं तो इस प्रोग्राम को चलाने वाले गैर लाभकारी संगठनों से उन्हें हर महीने 180 रुपए भी मिलते हैं। इन पैसों से वे धीरे धीरे चूल्हों की कीमत भी वापस चुका देते हैं। तो क्या घरों के भीतर वायु प्रदूषण के कहर से पूरी तरह निजात दिला सकेंगे ये नए चूल्हे? पर्यावरण मामलों की संस्था टेरी की बिक्सना गिल ने बताया,
Rather than taking a larger leap, it's taking a smaller step towards a better cooking solution.
मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये चूल्हे आखिरी उपाय हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कम ईंधन प्रयोग करने वाले इस तरह के चूल्हों ने वायु प्रदूषण कम करने की तरफ बड़ी पहल तो की है। जैसे जैसे दूसरे क्षेत्रों में इनका प्रयोग बढ़ेगा, ज्यादा फर्क दिखेगा।
एक तरफ जहां इस तकनीक को दूसरे क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने की शुरुआत हो रही है, ओडिशा के नोटरपल्ली गांव वाले इसके फायदों पर बात करते नहीं थकते। शाम हो चली है और चलने का समय है, लेकिन मुर्गी के चूजों के पीछे भागते इन बच्चों की तस्वीर ले लेता हूं, घर में दिखाऊंगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC, नोटरपल्ली, ओडिशा।
1973 में एक फिल्म आई थी, बड़ी हिट हुई थी, जिसका नाम है यादों की बारात। इस फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले आमिर खान आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो मौका है और दस्तूर भी।
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मुझे नींद न आए। चांद सिफारिश जो करता हमारी
माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच गुरुवार से रांची में खेला जाएगा और पिछले दो टेस्ट मैच ये साफ इशारा कर रहे हैं कि ये मुकाबला किसी दंगल से कम नहीं होगा। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक दलित शोध छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। दिल्ली पुलिस ने इतिहास विभाग में एमफिल कर रहे मुथु कृष्णन जीवानंदम का शव उनके एक दोस्त के घर में पंखे से लटकते हुए पाया। ब्रिटानी संसद ने एक अहम कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकार के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। तुर्की की सरकार का कहना है कि नीदरलैंड्स में दो तुर्क मंत्रियों को रैली न करने दिए जाने के विरोध में तुर्की में नीदरलैंड्स के राजदूत को देश नहीं लौटने दिया जाएगा। अमेरिका के न्याय विभाग ने राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा पर अपने फोन टेप किए जाने के आरोपों की संसदीय जांच के समक्ष जवाब देने के लिए और अधिक समय मांगा है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मेयरकल ने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वाशिंगटन की अपनी यात्रा अमेरिका के पूर्वी तट पर भारी बर्फबारी के कारण टाल दी है। अमेरिका की एक तटस्थ संस्था का कहना है कि यदि रिपब्लिकन पार्टी का पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों को वापस लेने के लिए चलाया जा रहा कानून पारित हो गया तो करीब 1,40,00,000 लोगों को स्वास्थ्य बीमे का लाभ नहीं मिल सकेगा। ओबामा केयर को वापस लेना डोनाल्ड ट्रंप के अहम चुनावी वादों में से एक था। BBC समाचार।
तो आज नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। खबरों को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे थे। हमारा अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को विदा दें, नमस्कार।